તારીખ 12/7/1992 પૂજ્યબહેનશ્રીના વચનામૃત બોલ નંબર 197 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 383
ज्ञान रूपी पर्याय को सूक्ष्म करके शुभाशुभ भाव और ज्ञान मैंने अपने के बीच में अंतसंधि में इसको पटकना। ज्ञान और राग, उसमें कोई तीसरा ज्ञान वाली प्रज्ञा छिनी है ऐसा नहीं है। शुभाशुभ भाव रूप जो राग है और साथ ही परिणमता हुआ ज्ञान है। ज्ञान को सूक्ष्म करके, दोनों एक नहीं है, साथ होने पर भी दोनों एक नहीं है, और ज्ञान में राग झलकता होने पर भी जो जिसमें प्रतिबिंब होता है वो ज्ञान है और राग बिल्कुल ज्ञान से भिन्न है। जैसे राग पतला पतला होकर के कितना भी राग सूक्ष्म हो जाए, मंद हो जाए, फिर भी वो राग ही है। राग का एक कण भी राग ही है, क्योंकि उसमें मलिनता भी है और दुख भी है। तो गंदगी होती है, उसका एक कण भी गंदगी ही है। ये फोड़ा होता है शरीर में, तो उसमें क्या होता है, सेप्टिक होता है। जब डॉक्टर इसको साफ करता है तो भीतर में कितना साफ करता है, एक कण भी रह नहीं जावे। रह जाए तो लोग दूसरे लोग को खराब करेगा। तो भले ही साफ करते करते लोही निकल जावे, लोही खून निकल जावे, लेकिन पूरा साफ करेगा घिस करके, दर्द होवे तो भी, क्योंकि उसका एक कण भी रहने लायक नहीं, रखने लायक नहीं। वैसे सूक्ष्म राग हो, आत्म स्वभाव को साथ में, आत्म स्वभाव को चिंतवन करने वाला राग हो, फिर भी राग है वो मैला है और राग है वो दुखदायक है। इसकी जाति ज्ञान से विरुद्ध है, इसकी जाति ज्ञान से विरुद्ध है, विभाव जाति का है। इसलिए इसमें कहा है कि पहचान करके, लक्षण द्वारा पहचान करके। राग का लक्षण आकुलता है क्या, और ज्ञान का लक्षण निराकुलता है। सार में वो बात लिया है, जहाँ वो अधिकार चला है मोक्ष का, वहाँ वो बात लिया है। तो लक्षण द्वारा पहचान करके, पहचान कब होती है, अभी तो ये विषय चलता है आजकल चर्चा में अपने, हैं, परिचय से पहचान भूल जाते हो। भावों का परिचय कैसे होता है? राग भी अपना भाव है, ज्ञान भी अपना परिणाम है, परिचय कैसे हो गए? अवलोकन करो तो परिचय हो। भीतर में राग का अनुभव कैसा होता है आकुलता में, और ज्ञान का अनुभव कैसा होता है निराकुलता में, उसका बार बार अनुभव को देखने से क्या अनुभव हो रहा है इसके ऊपर उपयोग को रखने से पता चलता है कि इसमें विभाव की जाति कैसी है, ज्ञान में स्वभाव की जाति कैसी है। पहचान में जाति की पहचान होती है। अच्छा, जैसे हम किसी आदमी को अच्छी तरह जान लेते हैं तो उसकी कोई भी प्रवृत्ति में अपना अभिप्राय बदलता है क्या? क्यों? कोई अच्छा आदमी नहीं है, और बहुत लोग उनको अच्छा है ऐसा मान सम्मान देते हैं, तो उसकी जाति तो पता है। जिसको जाति की पहचान है तो उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई भी देश में हो। देश बदलने से जाति तो नहीं बदलती। जैसे अपने यहाँ पहले अभी नहीं आता है, बहुरूपिया आते थे। एक जाति के ऐसे लोग थे जो वेश बदल कर करके दुकान पर आ जावे, कभी पुलिस बन के आवे, कभी ट्रेन का गार्ड बन के आवे, कभी पोस्ट मास्टर बन के आवे, पोस्टमैन बन के आवे, आपका मनी ऑर्डर आया है ले लो, नहीं पहचान हो तो हाँ लाओ लाओ ऐसा करे, तो फिर वो हंसने लग जाए तो पता चले अरे ये तो बहुरूपी है। उनको भी भरवाड़ बन के आए गोपालक, तो अलग अलग वेश में कहीं भी आवे, लेकिन जो उसकी जाति को पहचानता है वो पहचान लेगा। ये एक जाति मैंने इसका मूल स्वभाव क्या है, इसमें मूल तत्व क्या है, उसका एलिमेंट क्या है, ऐसा उसको पकड़ लेते हैं। परिचय से, अनुभव का परिचय से, वो अनुभव में आने वाले परिणाम है उस पर उपयोग लगाना होता है। और आप देखिए कि अपने चलते हुए परिणाम पर उपयोग ले जाएंगे तो उपयोग इधर उधर भटकना बंद हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि जो उपयोग कहीं भटकता रहता है वो तो बंद हो जाएगा। पहले तो उसको सीमा में आ जाना पड़ेगा, मर्यादा में आ जाना पड़ेगा। कैसा बनता है? मैंने एक बहुत चमत्कारी की विषय है जो अनुभव से ही मालूम पड़ता है, बिना अनुभव इसका फायदा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो रस को तोड़ता है। विभाव को अवलोकन करने वाला उपयोग विभाव रस को तोड़ देता है, और विभाव रस टूटने से दर्शन मोह भी बंद होता है और ज्ञान में निर्मलता आती है। ज्ञान में निर्मलता आने से ज्ञान में सूक्ष्मता आती है, और ज्ञान में सूक्ष्मता आने से सूक्ष्म राग है उसको राग समझ सकते हैं। अन्य मत में यहां से धोखा होता है, कि वो जो चिंतन करते हैं उसमें एकाग्रता को मान लेते हैं, आत्मस्थिरता को मान लेते हैं और साता की शांति को आनंद सुख मान लेते हैं, तो उनको विभाव जाति को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो उपासना उसको स्वभाव जान करके विभाव की उपासना करने लगते हैं। क्या करते हैं कि वो बराबर हुआ, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मानकर विभाव की उपासना करता है। वो धोखे में आ गया। इसलिए उपयोग को बराबर सूक्ष्म करके दोनों की संधि में, मैंने जहां भी अपनी अपनी दोनों की मर्यादा पूरी होती है वहां से उसको अलग कर देना, वहां से उसको अलग है तो अलग लेकिन अनुभव में अलग कर देना, उसको प्रगना छीनी का प्रहार किया ऐसा कहने में आता है। तो ये बात हुई प्रयोग की। प्रयोग और पुरुषार्थ अविनाभावी होता है। क्या चिंतन में पुरुषार्थ नहीं है, विचार में पुरुषार्थ नहीं है, मनन करने में पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन प्रयोग में पुरुषार्थ होता है। गुरुदेव जी का 304 नंबर का ये वचनामृत है, उसमें वो बात आई है। इस वस्तु को प्रयोग में लाने के लिए अंदर में मूल में से, भीतर में मूल में से पुरुषार्थ का उपाड़ आना चाहिए। प्रयोग के साथ पुरुषार्थ की बात किया है 304 की पहली पंक्ति। प्रयोग में पुरुषार्थ चालू होता है और पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि होती है, इसलिए यहां प्रहार करने की बात किया है। भीतर में ज्ञान स्वयं अपने आप में अंतर्मुख हो जाता है, उसको स्वसन्मुख होता है। मैं ज्ञान हूं, क्या अनुभव करता है, मैं ज्ञान हूं। तो मैं ज्ञान हूं, ऐसे अनुभव में मैं राग हूं अनुभव नहीं हो सकता। और जहां तक मैं राग हूं ऐसा भ्रांतिगत अध्यासित मिथ्या अनुभव है, वहां तक ज्ञान होते हुए भी मैं ज्ञान हूं ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। दोनों में अपनत्व नहीं हो सकता, राग में मैंपना अपनत्व ऐसा अनुभव करने वाला ज्ञान को चुक जाएगा। ज्ञान उपस्थित तो जरूर है, और जो ज्ञान में मैंपना का अनुभव करता है, अपनत्व करता है, वो राग होते हुए भी राग में अपने स्वरूप अनुभव नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता, दो बात साथ में नहीं हो सकती। उपस्थिति दोनों में हो सकती है, उपस्थिति राग और ज्ञान दोनों की हो सकती है, लेकिन अनुभव अपना अनुभव, आपरूप अनुभव, पोतारूप अनुभव एक में होता है। राग में होता है उसको ज्ञान में नहीं हो सकेगा, ज्ञान में होता है उसको राग में नहीं हो सकेगा। ये वस्तु स्थिति है। तो यहां पर कहते हैं कि सावधान होकर, सावधान मैंने बहुत दरकार से भीतर में काम करने का है। जैसे सुई में धागा परोना हो तो नजर तो बराबर करनी पड़ेगी, अगर बराबर तो सूक्ष्म है, बराबर नजर करेंगे तो धागा जाएगा उधर, इधर उधर देखने से धागा जाने वाला नहीं है, तो वो तो इससे भी सूक्ष्म है। राग और ज्ञान साथ में है, उसमें सूक्ष्मता तो बहुत है, और अनादि की आदत भी एकत्व करने की है, तो भिन्न होने में काफी सावधानी, काफी दरकार से, एकदम दरकार से, कि कहीं भी राग का, सूक्ष्म राग का एक कण को भी मैं अपना रूप, ज्ञान रूप मैंने अपना रूप मैंने ज्ञान रूप स्वीकार करने को तैयार नहीं। ये पार के भाव हैं, पार के मैंने हिंदी में क्या कहते हैं, पराया भाव है। ये पराया भाव है, पराई चीज को अपनी चीज को माने क्या, कितनी भी अच्छी हो लेकिन पराई चीज वो आखिर में पराई है, वो अपनी है ही नहीं, अपने तो उसमें भाषित ही नहीं होगा। पड़ोसी का लड़का सारे दिन अपने घर में खेलने के लिए आता हो, क्या सुबह से शाम तक अपने लड़के के साथ खेलता हो, लेकिन उसमें अपनापन कभी भाषित होता है क्या? एक से कपड़े पहने तो है? स्कूल का यूनिफॉर्म ड्रेस होता है ना, कपड़े एक सरीखे हो, लेकिन पराया वो पराया दिखता है, अपना कभी दिखता नहीं। इसी के नाम पहचान है इसी का नाम पहचान है, कि हम पहचानते हैं ये है, उम्र का बराबर है, उसका बिल्कुल शरीर भी ऐसा है, ऊंचा नीचा भी, पतला दुबला भी ऐसा ही है, कपड़ा भी ऐसा पहनता है, लेकिन वो पराया है, अपना नहीं है। ऐसे बराबर सूक्ष्म उपयोग करके और लक्षण द्वारा पहचान करके, तो पहचान नहीं होवे और सही भेद ज्ञान चले अनुभव के लिए, ऐसा नहीं बनता क्या? कोई स्वरूप निश्चय का विषय बीच में आ गया। स्वानुभव कौन कर सकता है? के पहचान पूर्वक जो भेद ज्ञान करता है वो कर सकता है। स्वभाव विभाव की पहचान जिसको हो और पहचान पूर्वक भेद ज्ञान हो तो, वरना अनुभव होने की कोई परिस्थिति नहीं है। अब दृष्टांत देते हैं। अभ्रक कहते हैं ना, हिंदी में क्या लिखा है, अभ्रक ही लिखा है। अभ्रक के पड़ वो निकलते हैं, खान में से निकलते हैं, राजस्थान में से ब्यावर की तरफ काफी मात्रा में निकलते हैं, बहुत पतले पतले हैं, ट्रांसपेरेंट। ये अपने इलेक्ट्रिसिटी में उसका प्रयोग होता है, इस्त्री वगैरह में, टोस्टर वगैरह में लगता है, हाँ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में इसका प्रयोग होता है, बहुत पतला पड़ होता है ट्रांसपेरेंट। वो कितना पतला होता है, बहुत बारीक होता है, उसको अलग करते हैं तो वो टूटे नहीं, अलग करना है फिर भी टूटे नहीं, उतनी सावधानी दरकार से ये काम होता है। ऐसे भीतर के अवलोकन में इतनी सावधानी से काम होता है कि राग जीव की पर्याय होने पर भी कहीं भी अपनापन होना नहीं चाहिए। या तो हम पूजा करें या भक्ति करें, मुझे भाव बहुत अच्छा आता है। क्या कहते हैं, आज तो हमने भक्ति का भाव बहुत अच्छा आया, भक्ति का भाव राग आया वो बहुत अच्छा आया, क्या पूजा में राग हुआ, बहुत भाव से पूजा की। तो ये मेरा भाव अच्छा है, ये मेरा है, इसमें मेरा कर लिया, इसका क्या, इसका तो विचार ही नहीं करें। मिथ्यात्व को दृढ़ करें और खुशी भी मनाए। बहुत अच्छा भाव आया हमें, बहुत अच्छा भाव आया भाई। भगवान तो वीतरागता के निमित्त है, भगवान तो वीतरागता के निमित्त है, और तू उसको राग का निमित्त क्यों बनाता है? ये तुझे शोभा देता नहीं है। जो वितरागता का निमित्त होने से उनकी मानता है, उसकी मानता तू क्यों तोड़ता है? राग का निमित्त बनाकर उसकी मानता को तू तोड़ देता है, ये तुझे शोभा देता नहीं है। लेकिन खुद परमात्मा होकर के नीच पद में उच्च पद मानकर हर्षित होता है, खुशी मनाता है, वो सालगिरह आती है ना, हमको इतना साल हुआ, मनाओ उसको, पार्टी पार्टी देते हैं वार्षिक दिन पर, जन्मदिन पर पार्टी देते कि नहीं है, बर्थडे पार्टी। तू अनादि अनंत आयु का धारक कैसा हो? तू अनादि अनंत आयु का धारक है और थोड़ा साल हुआ उसमें हर्षित हो गया, 25-50 साल में हर्षित हो गया क्या? निज पद में उच्च पद मानकर खुशी होता है, रंजित होता है, राजता है, कोई मान सम्मान देते तो क्या होता है? परमात्मा पद का मान सम्मान देते हैं, या तो हमारे प्रमुख है, या तो हमारे सेठ है, या तो हमारे नेता है, हमारे राजा है, या तो हमारे साधर्मी है, लोग मंडल में क्या होता है, आत्मार्थी है, साधर्मी है, धर्मी है, तो परमात्मा से तो कोई ऊंचा पद नहीं। निज पद में खुशी होता है, उच्च पद को भूल जाता है। क्या बुद्धिमानी है इसमें? इस बराबर सावधानी से उसको जुदा पाड़े, अलग करें, अनुभव में उसका अलग अलग अनुभव करें। अपना रूप राग का अनुभव अपने रूप नहीं करे, राग को पराये रूप में अनुभव करे, ज्ञान को अपने रूप में अनुभव करें। वैसे वो दृष्टांत दिया है, वैसे सूक्ष्म उपयोग करके स्वभाव विभाव के बीच में प्रज्ञा से भेद पाड़। पहले शुभाशुभ भाव और ज्ञान की बात लिया था, अब देखो शब्द बदल दिया। आगे शुरुआत में शुभाशुभ भाव और ज्ञान, इसके बीच में भेद ज्ञान करने की बात कही, अब क्या कहते हैं कि उपयोग सूक्ष्म करके स्वभाव और विभाव, ज्ञान की जगह स्वभाव शब्द ले लिया और शुभाशुभ भाव की जगह विभाव शब्द ले लिया। स्वभाव और विभाव के बीच में प्रज्ञा से मैंने ज्ञान से भिन्न भिन्न बना है ऐसा अनुभव कर। अनुभव तो ज्ञान करेगा, लेकिन शुभ अशुभ भाव में विभाव है वो जाति आगे, और ज्ञान में स्वभाव है वो जाति की बात ले लिया। इधर ऊपर ऊपर से पढ़े तो शब्द बदल दिया है, उसमें क्या रहस्य है पता नहीं चलेगा। शब्द तो बदल दिया ना कि शुभ अशुभ भाव नहीं रखा, उधर ज्ञान भी शब्द नहीं रखा, स्वभाव और विभाव कर दिया। तो इसमें कोई रहस्य है कि परिचय होने से किसी भी प्रकार का विभाव वो विभाव ही है, स्वभाव नहीं। और ज्ञान में ज्ञान की पर्याय नहीं, क्या ज्ञान में अकेली ज्ञान की पर्याय नहीं, लेकिन ज्ञान में ज्ञान स्वभाव, ज्ञान में ज्ञान स्वभाव क्या है। कभी हमने हमारे ज्ञान में स्वभाव क्या है इस उद्देश्य से देखने का प्रयास किया है क्या कि ज्ञान में स्वभाव क्या चीज होती है? इतना जरूर जानते सामान्य तौर से कि ज्ञान है सो जानता है, लेकिन स्वभाव क्या है इसमें? स्वभाव एक ऐसी चीज है कि जो सामान्य रूप होती है, क्या पर्याय है वो विशेष है और स्वभाव है वो सामान्य है। तो ज्ञान में सामान्यपने में स्वभाव दिखने में आता है, ज्ञान सामान्य में स्वभाव दिखता है, ज्ञान विशेष में नहीं। यहां से पर्याय दृष्टि छूटती है। पर्याय में से ज्ञान की पर्याय में से ज्ञान स्वभाव जो अपना रूप है, अपना स्वरूप है, वो जिसने देखा उसको पर्याय का अवलंबन छूट जाएगा। ये एक विशेषता है इसका, क्यों कि स्वभाव पर्याय रूप नहीं है। स्वभाव पर्याय में होते हुए भी पर्याय रूप नहीं है, द्रव्य रूप कहने में आता है स्वभाव को। वास्तव में तो द्रव्य का भेद है ऐसा रूप नहीं है, क्या भेद में अभेद को नहीं, निर्भेद को नहीं समझते हैं उसको, द्रव्य का भेद बता करके उसको कहते हैं कि वो द्रव्य रूप है। वास्तव में न तो पर्याय रूप है न तो द्रव्य रूप है, उसको अनुभव स्वरूप है ऐसा कहने में आता है। ये उलझन थी ना अजीत भाई की, अलवर वाले, वहां एक पंचाध्याय में गाथा चली है कि अनित्य पर्याय तो व्यवहार नहीं का विषय है, लेकिन नित्य द्रव्य भी व्यवहार नहीं का विषय है, ऐसे गाथा चली 762 उत्तरार्ध के। और 63 में ये कहा कि जो निश्चय स्वरूप है आत्मा का, वो तो अनुभय स्वरूप है, न द्रव्य का भेद रूप है न पर्याय का भेद रूप है, वो तो निर्भेद है। क्यों कि वो जैसा पर्याय में पाया जाता है वैसा ही द्रव्य में पाया जाता है, और द्रव्य पर्याय तो दोनों एक एक भेद रूप अंग है। जो वो केवल नित्य होता तो पर्याय में पाया नहीं जाता। तर्क क्या है इसमें कि जो सिर्फ वो द्रव्य रूप होता तो पर्याय में पाया नहीं जाता, और पर्याय रूप होता तो उसकी नित्यता रहती नहीं, क्योंकि पर्याय खुद अनित्य है। देखो कैसा वस्तु का स्वरूप है। शास्त्रकारों ने तो काफी बातें की है, इसलिए अनुभय, उभय नहीं, उभय मैंने दोनों में से एक भी नहीं है, न द्रव्य रूप है न पर्याय रूप है। तो ये बात जब चलती है अपने मुमुक्षु समाज में, जब सब लोग कहते हैं कि ऐसी बात तो कहीं पंचाध्यायी में कही है, लेकिन स्पष्टीकरण तो वहां गाथा में तो मिलेगा नहीं, वहां तो अनुभव से स्वरूप करके छोड़ दिया, लेकिन और कहीं मिलती नहीं ऐसी बात। अरे समय सार में 26 कलश लिखा है, कितने में जी भी ऐसा कहते हैं कि गायक कैसा है कि जैसा है ऐसा, आत्मा कैसा है कि जैसा है वैसा है, क्योंकि एक भी विशेषण से कहने जाए तो भेद पड़ता है और वस्तु निर्भेद है, वस्तु भेद रूप नहीं है। उसी कारण से जैसा है वैसा ही समझना पड़ता है। ये विषय थोड़ा प्रैक्टिस नहीं होने से कठिन लगता है कि ज्ञान में स्वभाव क्या है, क्या ज्ञान की पर्याय व्यक्त है, प्रकट है और अनुभव गोचर भी है कि मैं जानता हूं, क्या मैं जानने वाला हूं। आगे कहेंगे कि जो जानना रहा है वही मैं हूं, जो देखना रहा है वही मैं हूं, अनुभव को तरह, लेकिन इसमें स्वभाव है वो मैं हूं, उसमें जो स्वभाव है वो मैं हूं, तो उसका स्वभाव क्या वो देखना है। हीरा को कैसे पहचानते हैं, हीरा के स्वभाव से। सोने को किस, जो सोना होता है उसको कैसे पहचानते हैं, पीला इतना सोना होता है क्या ना? पीला उतना सोना, अरे चिकना उतना भी सोना नहीं। वो तो एक एक गुण तो दूसरे में भी मिलता है, कॉमन फैक्टर है। सोना है वो सोना है, जिसको परख होती है वही पहचानता है, उसकी स्वभाव की पहचान है। तो हर बात में ऐसी बात है, स्वभाव की पहचान करने में उपयोग को अधिक सूक्ष्म करना पड़ता है, उपयोग को बहुत सूक्ष्म करना पड़ता है। स्वभाव खुद ही सूक्ष्म है, स्वभाव खुद ही सूक्ष्म है, इसलिए उपयोग को सूक्ष्म करना पड़ता है। और इस बोल में तो, इस वचनामृत में तो बहुत सूक्ष्मता की बात लिया है, बार बार सूक्ष्मता की बात किया है। निर्मलता के बिना सूक्ष्मता आएगी। ये बात है, निर्मलता ये बिना काम होने वाला है वो दो बिना। आखिरी है, कैसा भी लाभ ज्यादा होता है तो कोई भी काम करने के लिए हम तैयार हैं, क्या लाभ ज्यादा होता है तो दुनिया में कोई काम नहीं करे वो हम करेंगे, क्योंकि इसमें लाभ ज्यादा है, हर एक करते हैं उसमें तो कंपटीशन होती है। हमारे व्यापारी लोग तो ऐसे बोलते हैं बाजार में कि जहां हरकत है वहां बरकत है। क्या बोलते गुजराती में वो कहवत चलती है कि जहाँ हरकत है वहां बरकत है, हरकत वाला काम करना चाहिए अगर धंधा में बरकत करना हो तो वहां तो उत्साह बढ़ाता है कि कितनी भी हरकत हो बरकत है कि नहीं, तो हरकत के लिए हम तैयार हैं, वहां तो तैयारी बताएगा कि नहीं बताएगा। हर आदमी सौराष्ट्र से आसाम में नहीं जाएगा, जाएगा क्या व्यापार करने के लिए, बगल में व्यापार कर लेगा क्योंकि तो राजस्थान में माल भेज दो, महाराष्ट्र में भेज दो, एमपी में भेज दो, क्योंकि बॉर्डर में लगे हुए हैं सब गुजरात की। आसाम में कौन जाएगा कि बीच में 6 स्टेट बदल जावे फिर 7वां नंबर आवे, ऐसा कौन करेगा, जाते जाते उसमें कौन दूर जाएगा, हर एक आदमी नहीं जा सकता, वो जाएगा वो ज्यादा कमाएगा, तो वहां तो तैयारी होती है। उधर क्यों ऐसा होता है कि ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, फायदा कितना हो तो बताओ। शादि अनंत अनंत समाधि सुखमा, अनंत दर्शन अनंत ज्ञान सहित जो, इतना तो बड़ा फायदा है। कोई एक डॉक्टर ऐसा बतावे वैद्य कि हमारे पास एक वनस्पति है, इसका उतना एक टुकड़ा खाने से आदमी मरता नहीं है, क्या हमारी जो जड़ी बूटी है वो जड़ी बूटी को खाने से, उतना टुकड़ा खाने से, कितना, एक टेबलेट जितना, गोली जितना, इसकी हम गोली बनाते हैं उसमें थोड़ा डाला है, आदमी मरता नहीं है, लेकिन इसकी कीमत बहुत है, क्या उसकी कीमत बहुत है, कितनी, कि जिसके पास जितनी संपत्ति हो उसको पास से उससे डबल लेना, मतलब संपत्ति पूरी देना उतना ही कर्जा करना, खाएगा कि नहीं खाएगा है? सिर सलामत तो पकड़िया बहुत, जिंदा रहेंगे तो और कमा लेंगे, खर्च करेंगे वो तो वापस दे देंगे, ले आएंगे किसी का भी, फिर 10 लाख है 20 लाख देना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लड़के को तकलीफ होगा, अरे कुछ भी लड़का का हो जाए हमको तो मरना नहीं है, कितना भी कष्ट उठाएगा कि नहीं उठाएगा, इसके लिए तो अनंत मरण को बचाने के लिए एक सम्यक दर्शन की टैबलेट खाना है और उसमें कुछ नहीं लगता, लगता है क्या? ज्ञानियों ने कभी मांगा कि आपको इतना देना पड़ेगा फिर मैं मेरे ज्ञान दूंगा, इसके पहले मैं ज्ञान नहीं देता, ऐसा कभी मांगा ज्ञानियों ने? तो जिसमें आत्मज्ञान की टेक्निक भरी है ये किताब 3 रुपये में बिकती है, सोनगढ़ में ये किताब 3 रुपये में बिकती है और पर्व के दिन में तो 2 रुपये में भी मिलती है, डिस्काउंट देते हैं उसमें भी, निष्प्रभ होते हैं क्या? ऐसी परम पदार्थ को बताने वाले देने वाले बहुत निष्प्रभ होता है, अरुचि से कठिन लगता है। अच्छा प्रश्न, अच्छा है क्या? अनुभव प्रकाश में लिखा है, दीपचंद लिखा, वो लिखा तो है लेकिन वो एक बात और लिख के गए कि आजकल मेरी कोई सुनते नहीं, क्या मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, मैं लिख के चला जाता हूं,
वो लिख के गए, किसी ने सुनी नहीं अपनी वो मौजूदगी में, वो लिख के चले गए। बहुत प्रशासन थे, बहुत प्रबल ज्ञानी थे, मतलब सामान्य ज्ञानी नहीं थे, प्रबल ज्ञानी थे। तो उन्होंने ये लिखा कि ये स्वानुभव होना बहुत कठिन है, ऐसे कहने वाला स्वरूप की चाह मटाने वाला मिटाने वाला बहिरात्मा क्या कठिन है? कितने आइटम का बिजनेस करते हो? कितने आइटम का करते हो? हैं? इधर को एक ही आइटम का बिजनेस है, ये तो दूसरे आइटम का बिजनेस नहीं है ये क्या? एक आत्मा और कुछ नहीं। 100 आइटम का बिजनेस करने में कठिनता नहीं, और एक आइटम का बिजनेस में कठिनता लगती है। बात कोई न्याय न्याय वाली तो बात होनी चाहिए कि नहीं? उत्साह तो ऐसे आना चाहिए कि जब मैं अपना देह के वास्ते सैकड़ों चीज के व्यवसाय करने के लिए तैयार हूं, मैंने सैकड़ों चीज में मैं माथा डालता हूं, तो इधर तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ स्वभाव विभाव दो ही बात है, दो में क्यों अपन को पता नहीं चले? दो में कौन सी बड़ी बात है? कोई हजारों बात होवे तो हम तो ये लगे कि इसमें क्या करें, ये तो हजारों बात है, क्या करें उसमें, समझ नहीं पड़ती। बात तो दो ही है, एक स्वभाव और एक विभाव। तो उसमें तो उत्साह आना चाहिए। जब उतनी बात है और हमारे घर की है, तो कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं होवे? क्यों नहीं होवे इसका जोर आना चाहिए। फिर कोई कठिनाई नहीं, रुचि होते ही कठिन लगता नहीं, अरुचि होते ही कठिन लगने लगता है, ऐसी ये बात है। जिस क्षण में विभाव भाव बरतता है, वही समय में ज्ञाता धारा बड़े मैंने ज्ञाता धारा द्वारा स्वभाव को भिन्न जान ले, जुदा जान ले, चालता परिणाम, भूतकाल के परिणाम का विचार नहीं करना है, ये अवलोकन आया। विचार है जो परिणाम व्यतीत हो गया उसका विकल्प उठना, उसका नाम विचार है कि हमको ऐसा भाव हो गया। लेकिन जब चलता है वर्तता है उसी वक्त उसको देखना है, ये अवलोकन है। जब जिस क्षण में विभाव वर्तता है वही क्षण में वही समय में ज्ञाता धारा मैंने ज्ञान धारा वही चल रहा है, एक समय का अंतर बीच में पड़ता नहीं है। जैसे पानी गिरता है नल में से, तो पानी की एक बूंद है वो दूसरी बूंद नहीं है, लेकिन अंतर नहीं है तो धार दिखती है। एक बूंद तो और बीच के दूसरे बिंद में अंतर नहीं है तो धार दिखती है। वैसे ज्ञान की भी धारा चल रही है, ज्ञान की भी धारा चल रही है, धारा वही ज्ञान चलता है सामान्य, क्योंकि विशेष में बदलना होता है, यहां तो ज्ञान बदलता भी नहीं है। यहां स्वभाव व्यक्त है, ज्ञान सामान्य सदृश स्वभाव है और वहां स्वभाव व्यक्त है। क्या मुमुक्षु लोग अपन प्रश्न पूछते हैं कि ज्ञानी को तो ज्ञान धारा है ने, इसलिए वो विभाव को अलग कर देता है, हमारे पास तो ज्ञान धारा है नहीं। तो ज्ञानी कहते हैं कि तेरे पास भी ज्ञान धारा है, तेरे पास भी ज्ञान धारा है, नहीं है ऐसी बात नहीं है। ज्ञान सामान्य में एक रूप ज्ञान धारा नग 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 चलता ही है। ज्ञाता धारा है तेरे पास, लेकिन अपने घर में क्या बात है वो कभी देखने की दरकार नहीं की। गुरुदेव कहते थे कि अपने खिड़की में ये लगाते हैं ना लोखंड के सरिये, तो इसमें कितने लगेंगे वो भी पता है अपने को, इसमें 11 आएगा, एक खिड़की में 11 नंबर आएगा, फिर उसको इतना लाना है। तो घर की खिड़की के वो सब बात की पता है, लेकिन अपने ज्ञान में ज्ञान सामान्य क्या, ज्ञान विशेष क्या, पता नहीं करते। धारा अत्यधिक भाव को सूचित करता है, सातत्य को, क्या सतत रूप से चलता है, और सातत्य में से स्वभाव निकलता है, क्योंकि स्वभाव भी सतत है। कि कितना स्वभाव महान है, सामर्थ्य रूप है, जैसे वो पेट्रोल निकलता है ना क्रूड ऑयल मिट्टी का तेल, तो सतत निकलता है, उस पर से पता चलता है कि कितना भरा है, अगर बंद हो जाता तो वहां पड़ा नहीं है, माल नहीं है वहां, तो सतत निकलता है, यहां से पता चल जाता है, उसका फोर्स से पता निकल जाता है। वैसे सातत्य है ज्ञान का, जो सातत्य है हाँ, और वो निर्लेप है, क्या ज्ञान न राग रूप होता है न पुद्गल रूप होता है, देह के साथ रहते हुए देह रूप नहीं हुआ, राग के साथ रहते हुए राग रूप नहीं हुआ, धारावाही चालू रहता है, एक समय में उत्पाद भी दोनों है, इसलिए वो धारावाही रहता है। ऐसे ज्ञाता धारा से स्वभाव को अलग जान ले तो स्वभाव कैसा है, राग से भिन्न ऐसा स्वभाव कैसा है उसको जान ले, है तो जुदा ही, किंतु तुझे बासित होता नहीं, इतनी सूक्ष्मता नहीं है, मलिनता है और स्थूलता भी है, तो तुझे बासित होता नहीं है। कोई भाव बासन होवे तो सूक्ष्मता में नहीं होवे और सूक्ष्मता और बढ़ जावे, क्योंकि उसमें स्वभाव की अनन्य रुचि पैदा हो जाती है और ज्ञान में भी निर्मलता और सूक्ष्मता आ जाती है। इसीलिए वेद ज्ञान का विषय प्रयोग का है ना, तो प्रयोग का विषय कुछ प्रयोग में आने से अच्छी तरह मालूम पड़ता है, बातों में तो उसका कुछ अंश माणिक गोचर नहीं होता नहीं। हाँ रस नहीं हो तो प्रयोग नहीं, लाभ दिखे तो रस आएगा, लाभ दिखे तो रस किसमें आता है, देखे ना, सुख दिखे लाभ दिखे, यहां से सुख मिलेगा लाभ होगा, सुख का लाभ होगा तो रस आएगा, लाना नहीं पड़ेगा, रोक नहीं सकते अपने रस को, रोक नहीं सकते। आपके मांस माल पड़ा है, क्या माल लेने को गए कलकत्ता? आपका इन्वेस्टमेंट समझो 1-2 लाख का है, अगले ने बोला कि भाई 5 लाख का ले जाओ, पैसा कुछ देर सवेर भेजो, हम मंगाएंगे नहीं लेकिन हम देते हैं तो आप ले जाओ। अब ले भी आए 5 लाख का माल और पता चला कि कोई ऐसा कारण बन गया है कि इसमें भाव है वो 10 गुना हो जाएगा, तो 5 लाखों का माल गोडाउन में पड़ा है और 50 लाख हो जाएगा ऐसा अखबार में कोई समाचार आ गया, और आपकी पूंजी तो 2 लाख की थी और हो गया इसका 50 लाख ओवरनाइट। अब आप सोते सोते कितने रस में आते हैं बताइए, सोए हुए हैं लेटे हुए हैं ना, कितने रस में आते हैं? कहां से लाए रस, वो रस कहां से पैदा किया बताइए? पदार्थ भाषित नहीं होता, दिखता नहीं है, ये जीव ऐसा है पक्का, ऐसा है पक्का, देखे भी ना माने नहीं, किसी की भगवान की भी नहीं माने, गुरु की नहीं माने, शास्त्र की भी नहीं मानता। उसको कुछ दिखा दो मान लेगा फिर क्या? तो कहते हैं कि ज्ञान के उपयोग में स्वभाव अंश को देखो, सामर्थ्य को देखो, ये सतत आता है तो कहां से आता है, अनादि काल से सतत बहता है तो कितना सामर्थ्य है तो बहता है, और इतना जन्म मरण हुआ, इतनी पीड़ा हुई, दुख हुआ, विभाव हुआ, ज्ञान को कुछ हुआ ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान ही रहा, कितना सामर्थ्य, सामर्थ्य दिखे तो उतना रस आएगा, उतना रस आएगा कि जगत का कोई पदार्थ इस रस को तोड़ सकता नहीं। क्या जगत में कोई ऐसा द्रव्य नहीं, भाव नहीं कि इस रस को तोड़ सके, ऐसी बात है, ये विषय ऐसा है। क्यों निकले, क्या हमें मोक्ष नहीं चाहिए क्या? एक सेकंड में मोक्षार्थीपन आता है, उसमें तो कंडीशन भी नहीं है, पूर्व शर्त भी नहीं है, क्यों पसीना आवे? क्या हमें नहीं चाहिए क्या मोक्ष? क्या हमें संसार में भटकना है क्या? कोई ऐसी बात नहीं है, पसीना आने की कोई बात है ही नहीं। माने तो दिखे, उसमें क्या है कि कहने वाले पर ओगे भी विश्वास तो रखते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहने वाले पर विश्वास ही नहीं होवे, अपने शास्त्र पर, अपने गुरु पर विश्वास ही नहीं होवे, क्या मालूम सही कहते हो या झूठे कहते हो, उनका भूल नहीं हो या भूल हो, हम क्या जाने, अविश्वास से सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको कुछ दिखने वाला नहीं है, लेकिन माने कि नहीं कोई महापुरुष है तो कभी दूसरी बात करने वाले है ही नहीं, सिवा सत्य उनके पास कोई चीज हो ही नहीं सकती, हम नहीं जानते तो क्या बात है, लेकिन हमारा विश्वास तो पूरा है तो दिखने का अवकाश है, वरना तो दिखने का भी अवकाश नहीं है, ऐसे बात। क्रम मैंने ऐसे माने, मैंने उसको प्रमाणित करे, ये कहने वाला प्रमाणित, ऐसा उतना ओक संज्ञा से भी भक्ति होए, बहुमान होए, प्रमाणिकता पर विश्वास होए, तो फिर उसको लिखने का वचन पर विश्वास आएगा, तो उसका उस विषय में अधिक गहराई में जाने का पुरुषार्थ चलेगा। अविश्वास से दिखेंगे, शंका से दिखेंगे, तो काम कैसे करेंगे? उतनी बात मर्यादित अपेक्षित। वहां तो पहचान की भी बात है, सत्पुरुष की आज्ञा रुचि रूप संकेत जो कहा उसमें सत्पुरुष की पहचान की बात है। अगर सत्पुरुष को पहचाना तो सत्पुरुष में जो स्वभाव प्रकट है उसको भी पहचाना, उसको अंतरंग को पहचाना, अंतर परिणत को पहचाना जहां स्वभाव प्रकट है, तो फिर अपने में जो अप्रकट है उसको भी पहचान लेगा। ऐसी उतनी बात है। वो तो पहचानने का सवाल ही पैदा नहीं, उनके लिए तो आत्मा को पहचानने का सवाल, जो प्रकट दिया को नहीं देखता, वो प्रकट नहीं हुआ है ऐसा दिया को कहां से देखेगा समझेगा। बिल्कुल, चाहे तो सत्पुरुष को ही पहचानना होगा, और पहचानेंगे तभी ही देशना लब्धि मिलेगी, इसके पहले तो मिलने वाली नहीं। परिचय करे तो पहचान, पहचानने में तो सिवा परिचय कोई दूसरा इलाज है ही नहीं, वो कोई दिखाने की बात है ही नहीं, परिचय करना पड़ता किसी बात नहीं। तो धन्य आराधना नहीं होगा इधर है, एक मिनट तौतीस छो जो पैरेग्राफ है ऊपर नो पैरेग्राफ 427 नो जो पत्र है ऊपर नो तौतेर में पाने पैरेग्राफ तो आ बाजू थी 72 पाने थी नीचे छेली लीटी थी शुरू थाई छे। आ विषयनું એવું તાત્પર્ય છે કે વ્યવહાર અને પરમાર્થ વચ્ચેની સમતુલા જાળવવા, પૂર્વકર્મના ઉદયને ઉદાસીન પરિણામે વેદીને તેની નિર્જરા કરવી, સાથે સાથે અન્ય જીવની અનુકંપા અને ઉપકારના કારણે કારણને લક્ષ્યમાં રાખીને સહન કરીને પણ ઉપાધિ વેદવી, આ પ્રકારે વર્તવું યદ્યપિ સહેલું નથી, બે ધારી તરવાર ઉપર ચાલવા કરતાં પણ વિશેષ કઠિન અને દુર્ઘટ છે, એવા કઠિન માર્ગ પર જ્ઞાની પુરુષને વર્તતા જોઈ કોઈ પણ અંતરથી ઓળખનાર મુમુક્ષુનું હૃદય નમી પડે તે સ્વાભાવિક છે. ત્યાંથી કેવી રીતે ઓળખવા? જુઓ, એક મુદ્દો અહીંથી નીકળે છે. શું કે ગ્રસ્તમાં છે શ્રીમદજી? ચિત્ત એવું થઈ ગયું છે કે જરા પણ ઉપાધિ એમને પોસાતી નથી, થોડી પણ ઉપાધિ પોસાતી નથી. એવી પરિસ્થિતિમાં ઘણા ઉપાધિવાળા કામ કરે છે, ઉપાધિના ઘેરામાં આવી ગયા છે. 26મું વર્ષ છે એમને. તો એ વ્યવહાર છે એમનો, ગ્રસ્થીનો જે વ્યવહાર છે, વ્યવસાયનો વ્યવહાર છે. અંદરમાં પરમાર્થ આત્મકલ્યાણનો પુરુષાર્થ છે. આ બંને વચ્ચે સમતુલા જાળવે છે, બેલેન્સ જેને કહેવામાં આવે છે. એટલા વ્યવહારમાં ખેંચાતા નથી કે પરમાર્થ છૂટી જાય, એટલા પરમાર્થમાં લાગતા નથી કે વ્યવહારમાં જેની સાથે છે એનું જે થવું હોય તે થાય. અનુકંપાનો ત્યાગ કરી દે કે ઉપકારનો ત્યાગ કરી દે. ઉપકારનો ત્યાગ એટલા માટે કે એ પોતે ફાઇનાન્શિયલ પાર્ટનર નહોતા. એમનું પરિવાર જે કુટુંબ હતું, રવજીભાઈ પંચાણભાઈ, એમની આર્થિક સ્થિતિ થોડી નબળી હતી, એટલે એમને તરત જ આર્થિક બોજો એમના માથે આવી ગયો, એટલે વ્યવસાયમાં લાગ્યા. એ 20 વર્ષની ઉંમરે વ્યવસાયમાં લાગી ગયા છે. હવે એમની કાર્યક્ષમતા ઉપર તો ધંધો ચાલતો હતો. એ ઉડાડીઓ કરીને નીકળે તો એમના વિશ્વાસે તો એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરેલું હતું પેલા બીજા ભાગીદારોએ, એ બધા જોખમાઈ જાય. હા, કહેવાય કે ખુદ કા જો આર્થિક